वक्रोक्ति संप्रदाय और उसके सिद्धांत। वक्रोक्ति का अर्थ है वह उक्ति जिसमें वक्रता हो। वक्रता का शाब्दिक अर्थ है टेढ़ापन, असामान्य, विचित्र आदि। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने वक्रता का अर्थ प्रसिद्ध कथन से भिन्न अर्थात असामान्य या विचित्र ही किया है। अस्तु, वक्रोक्ति संप्रदाय के अनुसार काव्य का सौंदर्य उक्ति की विशिष्टता व विचित्रता में है तथा ऐसी उक्ति ही काव्य की आत्मा है। इसी दृष्टिकोण को लेकर आचार्य कुंतक ने लगभग 10वीं शताब्दी में अपने नए मत की स्थापना करते हुए वक्रोक्ति जीवितम की रचना की। इस ग्रंथ में प्रतिपादित आधारभूत सिद्धांत चाहे हमें स्वीकार हो या न हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्य कुंतक में पर्याप्त प्रतिभा एवं नूतन विवेचन की क्षमता थी। यद्यपि परवर्ती विद्वानों ने वक्रोक्ति संप्रदाय को अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं किया, किंतु फिर भी हमारे विचार में मौलिकता एवं व्यापकता की दृष्टि से इसकी देन ध्वनि संप्रदाय से कम नहीं है। वक्रोक्ति की परंपरा। यद्यपि वक्रोक्ति का पूर्ण भाग्योदय 10वीं शताब्दी में कुंतक के द्वारा ही हुआ, किंतु इससे पूर्व भी उसका जन्म एवं विकास हो चुका था। वस्तुतः वक्रोक्ति का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं अलंकार शास्त्र का। भामह छठी शती ने अपने काव्यालंकार में वक्रोक्ति को अत्यंत व्यापक रूप में प्रस्तुत करते हुए इसे सब अलंकारों की जननी माना है। उनके विचारानुसार वक्रोक्ति के अंतर्गत शब्द और अर्थ दोनों की वक्रता सम्मिलित है। यह वक्रोक्ति ही इष्ट अर्थ और वाणी की मूल अलंकार है, या यूं कहिए कि अलंकार की मूल आधार है। साथ ही उन्होंने इसे अतिशयोक्ति की ही पर्यायवाची माना है। यह ध्यान रहे कि भामह अतिशयोक्ति को भी सभी अलंकारों की जननी मानते हैं। इस प्रकार भामह वक्रोक्ति को काव्यत्व का आधारभूत तत्व मान लेते हैं। आगे चलकर दंडी ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति से पृथक मानते हुए इसे भामह की भांति विभिन्न अलंकारों का मूलाधार माना है, किंतु वामन ने इसे एक विशिष्ट अलंकार मात्र मानकर इसके क्षेत्र को संकुचित कर दिया। वामन परवर्ती रुद्रट तो वक्रोक्ति के और भी अधिक विरोधी निकले। उन्होंने इसका स्वरूप इतना अधिक संकीर्ण कर दिया कि वह केवल एक शब्दालंकार मात्र रह गई। इस प्रकार भामह से लेकर रुद्रट तक वक्रोक्ति के क्रमिक ह्रास की पूरी एक श्रृंखला चलती रहती है। यह आश्चर्य की बात है कि स्वैभव वंचिता वक्रोक्ति को ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठाता आचार्य आनंदवर्धन ने इतनी अधिक सम्मान प्रदान किया कि एक ही बार में अपनी समस्त खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः पा सकने में समर्थ हुई। आचार्य आनंदवर्धन ने स्पष्ट शब्दों में लिखा, सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति रनयार्थो विभाव्यते, यत्नो स्याम कविना कार्य कोलंकारो नया विना। यह उक्ति मूलतः भामह की है, इसे आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है। अर्थात यह सब वही वक्रोक्ति है, इसके द्वारा अर्थ चमक उठता है। कवियों को इसमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए, इसके बिना अलंकार है ही क्या। संभवतः आनंदवर्धन की इस प्रशंसा के कारण ही कुंतक को इतना बल मिला कि वे ध्वनि संप्रदाय के विरोध में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना करते हुए वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित कर सके। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि वक्रोक्ति के प्रति कुंतक का दृष्टिकोण आनंदवर्धन से पर्याप्त व्यापक है, किंतु परवर्ती आचार्यों और विद्वानों ने वक्रोक्ति को एक अलंकार विशेष के रूप में ही स्वीकार किया, उसका व्यापक रूप उन्हें मान्य नहीं हो सका। वक्रोक्ति संप्रदाय का काव्य संबंधी दृष्टिकोण। वक्रोक्ति संप्रदाय के आधारभूत सिद्धांतों को समझने से पूर्व उसके काव्य संबंधी दृष्टिकोण से परिचित हो जाना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही अपनी काव्य संबंधी अनेक धारणाओं को व्यक्त किया है। सबसे पूर्व वे काव्य शब्द की विवेचना करते हुए बताते हैं, कवेह कर्म काव्यम, अर्थात कवि का कर्म ही काव्य है। यहाँ प्रश्न उठता है, कवि किसे कहते हैं? कुंतक इस संबंध में मौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि शब्द की व्याख्या करना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। खैर, आगे चलकर वे काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, शब्दार्थ सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितौ काव्यम तद्दुल आह्लाद कारणी, अर्थात काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाली सुंदर कवि व्यापार युक्त रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। आचार्य कुंतक की उपर्युक्त परिभाषा में स्पष्ट है कि वे एक तो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों को समान महत्व देते हैं, दूसरे प्रत्येक रचना के लिए आह्लाद कारणी होना आवश्यक मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने कुंतक की इन्हीं मान्यताओं का सूक्ष्म विवेचन करते हुए निम्नांकित निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक, आचार्य कुंतक के विचार से काव्य में वस्तु तत्व एवं माध्यम या अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों का तादात्म्य होता है। दो, काव्य का वस्तु तत्व साधारण न होकर विशिष्ट होता है, अर्थात उसमें ऐसे तथ्यों का वर्णन नहीं होता जो अति प्रचलित होने के कारण प्रभावहीन हो गए हों। तीन, काव्य की अभिव्यंजना शैली असाधारण या अद्वितीय होती है। चार, अलंकार काव्य का मूल तत्व है, केवल बाह्य भूषण मात्र नहीं। पाँच, काव्य का काव्यत्व कवि कौशल पर आश्रित है, दूसरे शब्दों में काव्य एक कला है। छह, काव्य का कसौटी काव्य मर्मज्ञों का मन प्रसादन है। उपर्युक्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि कुंतक का दृष्टिकोण विशुद्ध कलावादी या सौंदर्यवादी था, किंतु आधुनिक कलावादियों की भांति वह एकांगी नहीं था। आधुनिक कलावादी केवल अपने मन प्रसादन को ही काव्य की कसौटी मानता है, जबकि कुंतक विद्वान पाठकों की अनुभूति को ही प्रमाण मानते हैं। इसी अंतर के कारण कुंतक संकीर्ण व्यक्तिवाद से ऊपर उठ जाते हैं। वक्रोक्ति, स्वरूप और भेद। जैसा कि हमने आरंभ में कहा था, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को अत्यंत व्यापक रूप में ग्रहण किया था। सर्वप्रथम तो उन्होंने उसकी परिभाषा ही अत्यंत व्यापक रूप में की, दूसरे उसके भेदोपभेद का निरूपण इतने विस्तार से किया कि उसमें वर्ण विन्यास से लेकर प्रबंध कल्पना तक काव्य के सभी अंगों का सन्निवेश हो जाता है। कुंतक द्वारा की गई वक्रोक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। उभावे तावलंकारयो तयोः पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्ध भंगी भणितिरुच्यते, अर्थात यह दोनों यानी शब्द और अर्थ अलंकार्य होते हैं तथा विदग्धतापूर्ण कथन रूपी वक्रोक्ति ही उन दोनों की अलंकार होती है। यहाँ अलंकार का अर्थ व्यापक रूप से ग्रहण करते हुए सौंदर्य समझना चाहिए। उद्धृत पंक्तियों में वक्रोक्ति को न केवल शब्द से या अर्थ से अपितु दोनों से संबद्ध माना गया है। वह मूल वस्तु न होकर उसकी साथ सज्जा होती है, उसमें कथन शैली का समस्त चारुत्व समन्वित हो जाता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के छह भेद किए हैं। एक, वर्ण विन्यास वक्रता। दो, पद पूर्वार्ध वक्रता। तीन, पद परार्ध वक्रता। चार, वाक्य वक्रता। पाँच, प्रकरण वक्रता। और छह, प्रबंध वक्रता। यहाँ हम प्रत्येक की अलग अलग विवेचना करेंगे। एक, वर्ण विन्यास वक्रता। कुंतक के शब्दों में जिसमें एक या दो या बहुत से वर्ण थोड़े थोड़े अंतर से बार बार ग्रथित होते हैं, वह वर्ण विन्यास वक्रता अर्थात वर्ण रचना की वक्रता कही जाती है। यहाँ वर्ण से तात्पर्य व्यंजन से है। वस्तुतः व्यंजनों की इस आवृत्ति को अलंकार संप्रदाय के शब्द में अनुप्रास का नाम दिया जा सकता है। इस वर्ण विन्यास वक्रता के भी तीन प्रकार माने गए हैं। एक, वर्गांत से युक्त स्पर्श अर्थात क से लेकर म तक के व्यंजनों का अंग न न म आदि से योग। दो, तलनादय अर्थात त ल न आदि द्वित्व रूप में बार बार आवृत्त हों। तीन, उपर्युक्त दोनों भेदों के अतिरिक्त तीसरा भेद यह है कि जहाँ र का बार बार प्रयोग हो। वस्तुतः ये भेद भी रीत गुणों माधुर्य ओज प्रसाद आदि के समन्वय की दृष्टि से किए गए प्रतीत होते हैं। इनके अतिरिक्त वर्ण विन्यास वक्रता के और भी अनेक उपभेद किए गए हैं जिसमें सही प्रकार के अनुप्रासों वृत्तियों यमकों आदि का इसमें अंतर्भाव हो जाता है। साथ ही आचार्य कुंतक ने वर्ण विन्यास वक्रता के लिए कुछ आवश्यक प्रतिबंध भी निश्चित किए हैं। जैसे एक तो वर्ण योजना सदा प्रस्तुत विषय के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरे, वर्ण विन्यास वक्रता के लिए अत्यंत चेष्टा करना या सुंदर वर्णों का प्रयोग उचित नहीं है। तीसरे, उसमें नवीन सौंदर्य होना चाहिए। चौथे, उसमें प्रसाद गुण का होना आवश्यक है। पांचवें, वह श्रुति सुखद भी होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि कुंतक ने वक्रता का उसी सीमा तक ही समर्थन किया है जहाँ तक कि वह काव्य के सहज स्वाभाविक सौंदर्य की अभिवृद्धि में सहायक सिद्ध हो, कृत्रिम रूप में प्रयुक्त वक्रोक्ति का समर्थन भी नहीं करते। दो, पद पूर्वार्ध वक्रता। शब्द के आरंभ में उत्पन्न वक्रता या यूं कहिए कि मूल धातु से संबंधित वक्रता को ही पद पूर्वार्ध वक्रता कहते हैं। इसके भी आठ भेद हैं। एक, रूढ़ी वैचित्र वक्रता। दो, पर्याय वक्रता। तीन, उपचार वक्रता। चार, विशेषण वक्रता। पाँच, समवृत्ति वक्रता। छह, वृत्ति वक्रता। सात, लिंग वैचित्र वक्रता। आठ, क्रिया वैचित्र वक्रता। इनका पृथक पृथक विवेचन यहाँ किया जाता है। एक, रूढ़ी वैचित्र वक्रता। जहाँ कवि अपनी प्रतिभा के बल पर किसी शब्द के रूढ़ या वाच्य अर्थ को इस प्रकार परिवर्तित कर दे जिससे उक्ति में सौंदर्य आ जाए, उसे रूढ़ी वैचित्र वक्रता कहते हैं। जैसे क, तव ही गुण शोभाल है सहृदय जब हिसराहि, कमल कमल है तव ही जब रविकर सो विकसाहि। ख, सीता हरण तात जनी कहहु पितासन जाय, जौ मैं राम तुकुल सहित कह ही दशानन आय। उपर्युक्त अंशों में क्रमशः कमल और राम में रूढ़ी वैचित्र वक्रता के उदाहरण हैं। 2, पर्याय वक्रता। एक ही अर्थ के द्योतक अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, किंतु कवि उनमें से किसी एक को चुनकर उक्ति में वक्रता या सौंदर्य उत्पन्न कर देता है, इसी को पर्याय वक्रता कहते हैं। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। यहाँ यदि अबला के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची नारी रख दिया जाए तो उसका मूल सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। अस्तु, पर्यायवाची का कवि द्वारा ऐसा चुनाव ही पर्याय वक्रता का उदाहरण है। 3, उपचार वक्रता। उपचार शब्द का अर्थ है अत्यंत विभिन्न पदार्थों में अत्यंत सादृश्य के कारण उत्पन्न होने वाली समानता या एकता, जैसे मुख रूपी चंद्र, जहां भेद होते हुए अभेद का अनुभव हो, ऐसी वक्रता को ही उपचार वक्रता कहते हैं। अमूर्त पर मूर्त का आरोप, अचेतन पर चेतन का आरोप तथा रूप का आदि अलंकार इसी के अंतर्गत आते हैं। इसका एक उदाहरण, झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर केवल प्रशांति को रहा चीर। यहाँ तीर और चीर उपचार वक्रता के उदाहरण हैं, क्योंकि झिंगुर का स्वर मूलतः भिन्न होता हुआ भी यहाँ चीरने वाले तीर से अभिन्न प्रतीत हो रहा है। 4, विशेषण वक्रता। जहाँ विशेषणों की विचित्रता या वक्रता के कारण काव्य में सौंदर्य हो, उसे विशेषण वक्रता कहते हैं। उदाहरण, सशंकित ज्योत्सनासी चुपचाप जड़ित पद्मित पलक दृगपात। 5, संवृत्ति वक्रता। जहाँ सर्वनाम आदि के द्वारा वस्तु का संवरण या गोपन करके वक्रता उत्पन्न की जाती है, जैसे वह चितवनी और है कछु जिहि बस होत सुजान, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहा हूँ मैं नाथ। 6, वृत्ति वक्रता। यहाँ वृत्ति से अभिप्राय व्याकरण के समास तद्धित आदि से है, इनसे संबंधित वक्रता को ही वृत्ति वक्रता कहते हैं। जैसे को घटिए वृषभानुजा वह हलधर के वीर, यहाँ वृषभानुजा में समास की वक्रता है। 7, लिंग वैचित्र वक्रता। यह वक्रता लिंग परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होती है, यथा क, कामायनी में श्रद्धा के लिए कौन तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में सुकुमार। ख, पंत की निम्नांकित पंक्ति में सिखा दो ना हे मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान। भौंरे को सामान्यतः पुल्लिंग में प्रयोग होता है, जबकि यहाँ उसे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया गया है जो कि चारुत्ववर्धक है। 8, क्रिया वैचित्र वक्रता। क्रिया संबंधी विचित्रता, इससे अनेक उदाहरण द्रष्टव्य हैं। उन्नत वक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा तीर्था, परिहय मनोरूप अभय धरिचय आनंदे छल की परय अखियां। इस प्रकार हम देखते हैं कि पदपूर्वार्ध वक्रता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें लक्षण और शब्द संबंधी विचित्रता के अधिकांश प्रकार समन्वित हो जाते हैं। 3, पद परार्ध वक्रता। इसका संबंध शब्द के उत्तरार्ध अंश या प्रत्यय आदि में से है। इसके भी अनेक भेद किए गए हैं, किंतु यहाँ केवल कुछ उदाहरण देकर ही आगे बढ़ जाएंगे। पियसो कहाँ हूँ संदेशरा हे भौरा हे काग, विकम्पित मृदु पुलकित गात। यहाँ संदेशरा और विकम्पित में क्रमशः ड़ा और वी के प्रयोग के कारण जो सौंदर्य आ गया है वह पद परार्ध वक्रता का उदाहरण है। 4, वाक्य वक्रता। यहाँ वक्रता का आधार पूरा वाक्य होता है। स्वयं वक्रोक्तिकार के शब्दों में वस्तु का उत्कर्ष युक्त स्वभाव के रूप में सुंदर रूप में केवल सुंदर शब्दों द्वारा वर्ण अर्थ या वस्तु की वक्रता कहलाती है। यह लक्षण जरा स्पष्ट है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जहाँ किसी वस्तु या विषय के स्वाभाविक रूप का ही ऐसा सहज वर्णन हो कि उसमें किसी प्रकार का अर्थ सौंदर्य उत्पन्न हो गया हो, तो उसे वाक्य वक्रता कहते हैं। इसके भी अनेक भेद किए गए हैं, जिनमें मुख्य दो हैं, एक स्वभावोक्ति, दो अर्थालंकार। दोनों के क्रमशः दो उदाहरण। 1, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाओ, मोसो कहत मोल को लिन्हो तुहि जसमति कब जायो। 2, उषा सुनह ले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। वस्तुतः वाक्य वक्रता के अंतर्गत प्रमुख अर्थालंकारों का समावेश हो जाता है। 5, प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती। हमारे विचार से प्रसंगगत वक्रता ही प्रकरण वक्रता मानी जाती है। इसके भी अनेक भेद किए गए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख ये हैं। भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना, ख प्रसंग की मौलिकता, ग पूर्व प्रचलित प्रसंग में संशोधन, घ रोचक प्रसंगों का विस्तृत वर्णन, अंग प्रधान उद्देश्य की सिद्धि के लिए सुंदर अप्रधान प्रसंग की उद्भावना, च प्रसंगों का पूर्वापर क्रम से अन्वय। विस्तार भय से यहाँ इनका विस्तृत विवेचन नहीं किया जाएगा, वैसे नाम से इनका अर्थ स्पष्ट है। छ प्रबंध वक्रता, इनके अंतर्गत प्रबंध काव्य, महाकाव्य, नाटक आदि का सौंदर्य आता है। इसके भी 6 भेद बताए गए हैं। 1 मूल रस परिवर्तन, ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि जिससे उसका मूल भाव और रस परिवर्तित हो जाए। 2 नाटक के चरित्र में संशोधन। 3 कथा के मध्य में किसी ऐसे कार्य की अवतारणा करना जो कि प्रधान कार्य की सिद्धि में योग दे। 4 नायक द्वारा मुख्य फल के साथ साथ अनेक फलों की प्राप्ति। 5 प्रबंध का नामकरण प्रधान कथा या घटना का सूचक। 6 एक ही मूल कथा पर आश्रित प्रबंधों का वैचित्र वैविध्य। वक्रोक्ति के भेदोपभेदों के संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि कुंतक ने उसे इतना व्यापक रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया था कि जिससे वह काव्य के सभी अवयवों एवं क्षेत्रों से संबंधित हो सके। वर्ण योजना से लेकर प्रबंध योजना तक के सभी कवि व्यापार वक्रोक्ति के इस व्यापक स्वरूप के अंतर्गत आ जाते हैं, किंतु दुर्भाग्य से परवर्ती विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया। आगे चलकर वक्रोक्ति एक शब्दालंकार मात्र रह गई, जिसके दो भेद माने गए, 1 काकु वक्रोक्ति एवं 2 श्लेष वक्रोक्ति। काकु में स्वर के उतार चढ़ाव या बोलने के लहजे के द्वारा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जैसे मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो, वह भोली समझी कि जाओ मत बैठो। श्लेष वक्रोक्ति में शब्द के अन्य अर्थ को ग्रहण करके अर्थ बदल दिया जाता है, यथा अरे घनश्याम हो तो यहाँ क्या काम, जाकर वर्षा करो। वस्तुतः वक्रोक्ति का यह संकुचित स्वरूप कुंतक की मान्यता के सर्वथा विपरीत है। यह संकुचित रूप उसे काव्य की आत्मा तो क्या उसके शरीर की एक अंगुली बनने लायक भी नहीं छोड़ता। वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद। एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का ही विलायती उत्थान बताया था। तब से ही इन दोनों का नाम साथ साथ लेने की एक परंपरा बन गई है, किंतु वस्तुतः दोनों में गहरा भेद है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे की मान्यता थी कि कला का संबंध स्वयं प्रकाश ज्ञान से है, जबकि कुंतक शास्त्रीय ज्ञान को भी कला से असंबद्ध नहीं मानते। दूसरे क्रोचे उक्ति की सहज स्वाभाविकता में काव्य का सौंदर्य मानते हैं, जबकि कुंतक वक्रता या विचित्रता को ही सौंदर्य का मूल आधार बताते हैं। तीसरे क्रोचे मानसिक अभिव्यंजना को ही प्रमुख मानते हैं, बाह्य अभिव्यक्ति उनके लिए गौण है। इसके विपरीत कुंतक बाह्य अभिव्यक्ति शाब्दिक अभिव्यक्ति की ही चर्चा करते हैं, क्रोची की तरह मानसिक अभिव्यक्ति की वे कल्पना ही नहीं करते। चौथे क्रोचे कला को अविभाज्य मानते हैं, जबकि कुंतक ने उसके विभिन्न भेदों पर भेदों का निरूपण किया है। पांचवें क्रोचे केवल कवि की आत्मतुष्टि को ही काव्य का लक्ष्य मानते हैं, जबकि कुंतक इसके स्थान पर सहृदय के मन को प्रसन्नता प्रदान करना लक्ष्य मानते हैं। वस्तुतः इस प्रकार अभिव्यंजनावाद और वक्रोक्ति सिद्धांत में गहरा अंतर्दृष्टिगोचर होता है, किंतु डॉक्टर नगेंद्र ने कई ऐसे बिंदु भी ढूंढे हैं जहां दोनों में साम्य हो जाता है, जैसे क दोनों अभिव्यंजना को ही काव्य का प्राण तत्व मानते हैं, ख दोनों ने काव्य में कल्पना तत्व को प्रमुखता दी है, ग दोनों ही मूलतः उक्ति को अखंड अविभाज्य और अद्वितीय मानते हैं, और क्रोचे की भांति कुंतक ने भी अलंकार और अलंकार्य का भेद नहीं माना है, घ दोनों ही सफल अभिव्यंजना अथवा सौंदर्य अभिव्यंजना में श्रेणियां नहीं मानते। यद्यपि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी प्रतिभा शक्ति के बल पर दोनों में थोड़ा साम्य खोज निकाला है, किंतु यह साम्य भी केवल शाब्दिक है, ऊपरी है। अर्थ की दृष्टि से भीतर प्रवेश किया जाए तो यहाँ भी दोनों में गहरा वैषम्य दृष्टिगोचर होगा। उदाहरण के लिए इसी निष्कर्ष को लीजिए कि दोनों ही अभिव्यंजना को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। अभिव्यंजना से सामान्यतः काव्य के माध्यम या शैली का तात्पर्य लिया जाता है, किंतु क्रोचे के लिए अनुभूति वस्तु से अलग शैली का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि कुंतक शैली की वक्रता को ही काव्यत्व का सारा श्रेय दे डालते हैं। अतः कुंतक और क्रोचे के अभिव्यंजना संबंधी दृष्टिकोणों में आकाश पाताल का अंतर है। इसी प्रकार उक्ति की अखंडता के संबंध में भी दोनों का दृष्टिकोण परस्पर विरुद्ध है। क्रोचे वस्तुतः उसे अखंडता मानते हैं, जबकि कुंतक वर्ण विन्यास वक्रता, पद परार्थ वक्रता आदि के भेदों का निरूपण करके उसे खंड खंड रूप में देखते हैं। अस्तु, जैसा कि आगे चलकर डॉक्टर नगेंद्र ने स्वयं स्वीकार किया है, यही कहना उचित है कि दोनों के सिद्धांतों में साम्य की अपेक्षा वैषम्य ही अधिक है। उपसंहार। वक्रोक्ति संप्रदाय के उपर्युक्त पर्यालोचन के अनंतर हम अंत में कह सकते हैं कि इसका सिद्धांत अधिक मान्यता एवं प्रचार नहीं पा सके, फिर भी इसका महत्व कम नहीं है। वक्रोक्ति के व्यापार रूप में रीत, अलंकार, ध्वनि, रस आदि सही पूर्व प्रचलित सिद्धांतों का समन्वय किसी न किसी मात्रा में हो जाता है। कुंतक की वर्ण विन्यास वक्रता में रीति के गुणों का, पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता में शब्दालंकारों का, वाक्य वक्रता में अर्थालंकारों का, प्रकरण वक्रता में ध्वनि का और प्रबंध वक्रता में अर्थालंकारों का, प्रकरण वक्रता में ध्वनि का और प्रबंध वक्रता में रस का प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। वस्तुतः वर्ण योजना से लेकर प्रबंध योजना तक का समस्त कवि कौशल एवं काव्य सौंदर्य इसमें किसी न किसी रूप में समाविष्ट हो जाता है। फिर भी यह आश्चर्य की बात है कि इतना व्यापक होते हुए भी यह सिद्धांत युग की मान्यता प्राप्त करने में सफल क्यों न हो सका। हमारे विचार से इसके तीन कारण हो सकते हैं। एक तो यह सिद्धांत इतनी देर से आया है कि इससे पूर्व रस, अलंकार, ध्वनि, रीत आदि विद्वानों के हृदय में स्थान बना चुके थे। अब लोगों में इतना उत्साह नहीं रह गया था कि वे किसी नव आविष्कृत सिद्धांत को समझने का कष्ट करते। दूसरे, यह सिद्धांत शैली पक्ष की दृष्टि से तो ठीक है, किंतु काव्य के मूल विषय की वैसी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता जैसी कि रस सिद्धांत करता है। वस्तुतः जिन पक्षों की वक्रोक्त सिद्धांत व्याख्या करता है उनकी रीति अलंकार ध्वनि से भी हो जाती है। तीसरे, इसका विवेचन इतना भेदोपभेदों का वर्गीकरण भी थोड़ा अस्पष्ट एवं जटिल हो गया है। संभवतः इन्हीं कारणों से यह लोकप्रिय नहीं हो सका। किंतु यदि हम लोकप्रियता को ही किसी सिद्धांत की कसौटी न माने तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वक्रोक्त सिद्धांत आचार्य कुंतक की अद्भुत प्रतिभा, व्यापक दृष्टि एवं व्यवस्थित चिंतन के समन्वय से उद्भूत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मौलिकता एवं व्यापकता की दृष्टि से यदि इसे रीति, अलंकार और ध्वनि सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण बता दिया जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। हाँ, रस सिद्धांत से अवश्य हल्का पड़ता है। अस्तु, प्राचीन आचार्यों के शब्दों में पुनः कहा जा सकता है, सहसा सर्वत्र वक्रोक्ति को अलंकारों ने आविना, अर्थात यह सर्वत्र वक्रोक्ति ही है, कौन सा सौंदर्य है जो इसके बिना हो। इस प्रकार वक्रोक्ति सिद्धांत और वक्रोक्ति संप्रदाय उसके सिद्धांत शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।